समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। और हस्बे दस्तूर हम हाजिर हैं ताजा तरीन खबरों के साथ, एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट हेडलाइंस वी ब्रिंग यू अ वेरी स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। और करिश्मा, आज का डेटलाइन इंडिया तो बहुत खास है because Vande Mataram, our national song, has completed 150 years. So yes, तो celebration तो बनता है,
बिल्कुल।
But let's start first with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया।
Campaigning for second and final phase of Bihar Assembly elections gains momentum. Leaders of several political parties hold rallies to woo voters.
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को लावारिस कुत्तों और अन्य पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए।
इंडिया डिलीवर्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू जमैका अफेक्टेड बाय हरिकेन मेलिसा।
और मौसम विभाग की अगले 48 घंटों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना।
And Karishma, as I had already mentioned, that now it's time for our very special segment, Dateline India, which has an equally special topic today, that is, Vande Mataram is now celebrating 150 years. Yes, 150 years of this very iconic song that still instills a lot of patriotic fervor in our hearts whenever we hear this tune. Yes, Vande Mataram is not merely a song. It is the eternal heartbeat of the Indian soul, echoing through the consciousness of this sacred land for over a century and a half. This song embodies the collective consciousness of India, an awareness forged through millennia of civilization, culture, and spiritual traditions. The country is celebrating 150th anniversary of its national song, Vande Mataram. This year, that is 7th of November 2025, marks the 150th anniversary of India's national song, which translates to Mother, I Bow to Thee, Vande Mataram. This composition, an enduring anthem, has inspired countless generations of freedom fighters and nation builders, standing as a lasting emblem of India's national identity and collective spirit.
Thank you. बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बाद में बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इस भजन को अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था और यह राष्ट्र की सभ्यतागत, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन गया था। इस मील के पत्थर का स्मरण एकता, त्याग और भक्ति के उस संदेश की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है, जो वंदे मातरम सभी भारतीयों के लिए निहित है। आइए सुनते हैं हमारा राष्ट्रीय गीत।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्।
Yes, Karishma, Vande Mataram is not merely an expression of salutation to the motherland. It is a pledge to protect her, to make her prosperous, and to uphold her pride. When a farmer toils in his field, a soldier guards the nation's borders, a teacher shapes young minds, or a youth brings glory through innovation, Vande Mataram finds its living expression in their actions. The younger generation must embrace the essence of this song, making it a part of their daily lives. And even in this era of rapid technological change, if love for the motherland and a sense of duty remain steadfast in our hearts, Vande Mataram will continue to resonate eternally.
और सायरा, वंदे मातरम के महत्व को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति, साहित्य, राष्ट्रवाद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जोड़ने वाले मार्ग का अन्वेषण करना बेहद आवश्यक है। एक काव्य रचना से राष्ट्रीय गीत के रूप में इस भजन का विकास औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध भारत के सामूहिक जागरण का प्रतीक है।
That's right, Karishma. And in fact, this is corroborated by a passage in the English daily Vande Mataram. And that was written by Sri Aurobindo on 16th April 1907. And he mentioned in his article that it was 32 years ago, because he wrote the article in 1907, it was 32 years ago that Bonkim composed his renowned song. It was observed that few listened at that time. But during a moment of awakening from long delusions, the people of Bengal looked around for truth, and in a fated moment, someone sang Vande Mataram. Prior to its publication in book form, Anand Math was serialized in the Bengali monthly magazine Banga Darshan, of which Bankim was the founder editor.
वंदे मातरम गीत उपन्यास के धारावाहिक प्रकाशन की पहली किस्त के मार्च अप्रैल 1881 अंक में प्रकाशित हुआ था। 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने बर्लिन में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस गीत ने अनगिनत भारतीयों को स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति देने के लिए प्रेरित किया, जिसकी लपटों ने स्वतंत्रता की सुबह को रोशन किया।
And yes, our correspondent brings a report on the history of India's iconic national song.
Penned by renowned Bengali poet and novelist Bankim Chandra Chatterjee, Vande Mataram stands as a symbol of India's awakening. As the British colonial rule tightened its grip, Vande Mataram found voice in India's freedom movement. Over time, Vande Mataram became a rallying cry of freedom fighters, a symbol of love and devotion to the motherland and a slogan of resistance against the foreign power. Vande Mataram was not only used as a song in meetings, processions and large public gatherings, but also as a slogan by freedom fighters and patriots. 1882 was the year when the song found its home in Bankim Chand's celebrated Bengali novel Anandmat, which was set in the background of the Sanyasi Rebellion in the late 18th century. The patriotic song was originally written in Sanskrit. In the year 1896, Gurudev Rabindranath Tagore sang this melodic poem for the first time at the Kolkata session of the Indian National Congress. Being officially adopted as the national song by the Constituent Assembly of India on 24th of January 1950, the then president of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, declared that Vande Mataram should be honored equally with the national anthem Jana Gana Mana, with Shivang and Soumya, Anuja Kumar for Akashwani News.
स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया। आज यह पीढ़ियों के भारतीयों में गर्व, श्रद्धा और एकता का भाव जगाता है। युग या भूगोल की सीमाओं से परे है और भारत माता की दिव्यता को प्रतिबिंबित करता है, जो सभ्यता, संस्कृति और शाश्वत चेतना की जीवंत प्रतिमूर्ति है।
Yes, today as India strides confidently on its path of self-reliance and development, the inspiration that guides this journey is the same spirit Chattopadhyay ignited a century and a half ago. As the nation advances with the mantra of Ek Bharat, Shreshth Bharat, Vande Mataram continues to strengthen our sense of unity. The song reminds us that India's true power lies in its diversity, in the harmony of its languages, cultures and way of life.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
वेल करिश्मा, नाउ ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट सेगमेंट इन विच वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री। और आज के सिलसिले में हम अपनी फेवरेट, एटलीस्ट जगह जो मेरी फेवरेट है, दैट इज गोवा, वहां से शुरुआत कर रहे हैं। एंड इफ आई एम टेकिंग द यू नो, अगर जिक्र गोवा का निकल रहा है और दैट टू इन द मंथ ऑफ नवम्बर, तो इतना हिंट मिल गया होगा सबको कि दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IFFI 2025 or the 56th International Film Festival of India, which is set to be held from the 20th to the 28th of this month in Panaji, Goa. Addressing the curtain raiser press conference of the event in New Delhi today, Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, said that the upcoming IFFI in Goa will serve as a bridge for creators to the world.
124 participants, young minds, new participants, they are going to participate in 13 crafts, 13 various verticals. They are going to participate and they are going to make them whatever cinema or documentary or reels they are going to do in the field of screenwriting, editing, sound, production, design. Further new initiatives also they are going to take.
And oh yes, Karishma, all eyes and ears are towards Goa for IFFI. I think the entire state, kya puri country, is gearing up for that big, big festival. Especially all the cine lovers look up to that and wait for that. And let's tell our listeners that Akashwani and all the studios, all the networks of Volunteer Radio, we will give latest reports from the spot at in IFFI. And Information and Broadcasting Secretary Sanjay Jaju said that the opening ceremony of IFFI will be held on the 20th of this month, marked by a carnival and a parade to celebrate the cinematic journey of the country. He noted that IFFI is an effort to showcase the cinematic diversity of the country.
Our films are not just being made for Indian audience, their films are now being made for global audience. And International Film Festival is, to an extent, our effort to showcase the cinematic diversity that we have in our country. At the same time, provide opportunities to global filmmakers to come and screen their films to the cinephiles who come in from not just India, but from various parts of the world. This year we have three countries that are participating majorly. We have Japan as a country of focus. You have Spain as another partner country. And we also have Australia, which was our country of focus last year as our spotlight country.
And Karishma, agar baat ki jaye filmon ki, to especially in our society, in Indian society, I think filmein bahut hi bhavuk sthan apna ek banati hain, sabke dilon mein jagah hai, isn't it?
Bilkul, aur kehte hain ki sabse zyada impact jo logon ke jeevan pe aajkal padta hai wo filmon se hai, aur pehle bhi kahin na kahin wo asar dikhai deta tha.
Absolutely.
Society mein.
And especially when I talk about our society, I think we are so addicted to cinema that, you know, the first thing that comes to our mind whenever we are planning a weekend getaway is, अच्छा जरा चेक करना कौन सी मूवी लगी है. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल आस्क. सो दैट कैन प्रॉपरली एप्टली पोर्ट्रे आवर लव फॉर सिनेमा एंड व्हिच इफी प्रॉबली यू नो द कमेमोरेशन ऑफ इफी एवरी ईयर थ्रू सो मेनी ईयर्स. आई थिंक इफी हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन ब्रिंगिंग ऑल दिस एब्सोल्युटली क्रिएटिव फिल्म मेकर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एट वन कॉमन प्लेटफॉर्म इन गोवा. एंड वी हैव अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट बाय वाल्सा विलियम्स.
The International Film Festival of India, celebrated since 1952, serves as a gateway between Indian and international cinema, fostering creative exchange, co-productions, and cinematic dialogue. It aims to celebrate creativity and innovation in world cinema and will serve as a meeting ground for filmmakers, artists, and cine enthusiasts. International films, including The Blue Trail, Sirat, and A Useful Ghost, will be screened this year. More than 240 films from 81 countries will be screened, with 13 world premieres, 5 international premieres, and 44 Asian premieres. This year, Japan will be the country of focus. 10 films, including India's Tanvi the Great, have been nominated for ICFT UNESCO Gandhi Medal. The festival has also initiated an AI film festival and cinema hackathon this year. Special screening of Dr. Kotnis Ki Amar Kahani will also be organized during the film fest to commemorate 125 years of Indian legend V. Shantaram. 21 Oscar entries, including South Korea's No Other Choice, Switzerland's Late Shift, Iraq's The President's Cake, and Reedland of the Netherlands will also be showcased. Films such as Mosquitoes, Little Trouble Girls, Poet, Amram, Mother's Baby, and Songs of Adam have been nominated this year for the Golden Peacock Award and Silver Peacock Award. With Adarsh's report for Parikrama, Valsa Williams, Akashwani News, Delhi.
और अब बात करते हैं उत्तर बंगाल की. दरअसल उत्तर बंगाल के कोच बिहार में 15 दिवसीय परंपरागत श्री मदन मोहन ठाकुर रास उत्सव तथा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन से भव्यता के साथ शुरू हो गया है. कोच बिहार के 17वें राजा महाराजा हरेंद्र नारायण ने अपने कुल देवता भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में रास मेला का शुभारंभ किया था, जो विगत 213 वर्षों से निरंतर चलते आ रहा है. उत्तर बंगाल का यह मेला सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है.
पश्चिम बंगाल में कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही कोच बिहार, नवद्वीप, मायापुर व शांतिपुर में भव्य रास मेला आरंभ हो गया है. भगवान श्री कृष्ण से संबंधित इन स्थानों पर हजारों की संख्या में लोग रास उत्सव तथा मेलों में सहभागिता कर रहे हैं. उत्तर बंगाल का प्रतिष्ठित रास उत्सव व मेला कोच बिहार के रास मेला मैदान में विगत 5 नवम्बर से आरंभ हुआ है तथा 20 नवम्बर तक चलेगा. यह मेला धार्मिक भक्ति भजन, सांस्कृतिक लोक कला प्रदर्शन, तथा स्थानीय उत्पादों, परिधानों व व्यंजनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। राज्य से तथा आसपास के राज्यों व नेपाल तथा भूटान से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस रास मेले में भाग लेने आ रहे हैं। मेले से संबंधित व्यक्ति प्राण प्रतीन पाल ने बताया कि
सबसे बड़ा ये रास उत्सव लगभग 213 वर्ष पुराना माना जाता है। कूचबिहार में इस रास उत्सव का केंद्र है श्री श्री मदन मोहन देव, और इसी रास उत्सव को केंद्र कर कूचबिहार में लगती है प्रसिद्ध रास मेला। इस विशाल मेले में करीब 3000 से अधिक स्टॉल लगी हुई है। मनोरंजन के साथ साथ नेपाल, भूटान, असम सहित विभिन्न राज्यों और देशों के व्यापारियों भी इस मेले में अपने उत्पाद लेकर पहुंचाना शुरू कर चुकी है।
इस बार 34 फीट लंबा रास चक्र बनाया गया है, जिसे श्री श्री मदन मोहन ठाकुर मंदिर से नगर परिक्रमा कराते हुए वापस रास मेले में रखा गया है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, करशंग।
And now, Karishma, we are moving up north towards the beautiful, beautiful region of Ladakh. Will the development of renewable energy in Ladakh can help support the local economy and improve living standards while preserving the region's fragile ecosystem? And as winter approaches, people in Ladakh prepare to protect themselves from the harsh cold by using various alternative sources. So we have a very interesting report. Let's hear more from our correspondent.
Ladakh's unique geography and climate make it an ideal location for harnessing solar energy and other forms of renewable energy. The region receives abundant sunlight throughout the year, making it well-suited for solar power generation. Some potential benefits of renewable energy in Ladakh include reducing reliance on fossil fuels, lowering carbon emissions, and energy independence. The government and NGOs are indeed working together to harness solar renewable energy in Ladakh. Ladakh Environment and Health Organization Deputy Director Tashit Thokmet highlights on various initiatives to harness the solar renewable energy.
ये जो solar energy related activity करने का main मकसद यही है कि एक तो हमारे harsh climate और long winter season, दूसरा हमारे environment, आजकल global warming का जो issue है बहुत ही serious होते जा रहे हैं, उसको हमने ख्याल रखते हुए इस activity को पिछले 20 साल पहले हमने शुरू किया था। तो इसमें हमने ज्यादातर focus किया है कि solar building जो है, जिसमें हमने बाहर जब -15 to 20 होगा, उस वक्त अंदर का टेम्परेचर जो है इस बिल्डिंग में हमने जो बनाया है इस बिल्डिंग में +8 degree से कम कभी नहीं गिरेंगे। ये जो हमने बनाकर अभी तक ले होने तकरीबन 300 हाउस होल्ड को हमने रोट्रोफिटिंग पिछले 15 साल पहले हमने किया था। और दूसरा जो है जो सोलर बाथरूम जो है स्कूल हॉस्टल्स में हमने सोलर बाथरूम अभी तक किए हैं। थर्ड जो है हमने सोलर ग्रीन हाउस, जो कि यहाँ लद्दाख में सर्दियों में सब्जी उगाना ओपन फील्ड में नहीं हो सकता है टेम्परेचर डाउन होने के कारण, तो हमने ग्रीन हाउस जो कि डबल वॉल सेमी रूफ वाला एक ग्रीन हाउस हमने डिजाइन किया था, जिसकी वजह से सर्दियों में भी सब्जी आराम से उगा सकते हैं।
By taking small steps, individual can collectively make a significant impact in protecting Ladakh's environment and promoting sustainable development. For Parikrama, this is Chetan Trashi from Leh Ladakh.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में भारत की रतिका सुंथाथिरा सीलन ने आज सिडनी में करेन ब्लूम को सीधे गेम में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
And well, Karishma, nation is celebrating. The celebrations have already started in the nation today to commemorate 100 glorious years of Indian hockey. Well, Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandviya recalled India's glorious past in the sports of hockey and its dominance on the global stage. Dr. Mandviya also unveiled the trophy for FIH Hockey Men's Junior World Cup. Starting from the 28th of this month and continuing till 10th of December, this tournament will be played in two cities, that is Chennai and Madurai, and over 11,500 players will participate in 24 matches. And now, Karishma, some business news. Well, benchmark domestic equity indices, the Sensex and Nifty, began the day on a negative note, facing initial selling pressure. The Sensex shed 95 points to close at 83,216, while Nifty dipped 17 points to settle at 25,492.
Oh. और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember one of the greatest freedom fighters, Bipin Chandra Pal, who was born on November the 7th, 1858, in Sylhet region of British India, which is now in Bangladesh. An early leader of the Indian nationalist movement, Pal was one of the Lal Bal Pal triumvirate, which also included Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak.
The trio used to question the method of petitions followed by moderates and argued for direct action to achieve political objectives.
In 1886, Bipin Chandra Pal joined the Indian National Congress, and at the Madras session of 1887, he made a strong plea for repeal of the Arms Act, which was discriminatory in nature.
The Bengal partition of 1905 shook Bipin Chandra Pal deeply. He launched the journal Bande Mataram in 1906, which Aurobindo Ghosh soon joined as editor.
Bande Mataram, Bande Mataram, Bande Mataram.
Bipin Chandra Pal is known as the father of revolutionary thoughts in India. Along with Aurobindo Ghosh, he is recognized as the chief exponent of a new national movement revolving around the ideals of Purna Swaraj, Swadeshi, boycott and national education.
Bipin Chandra Pal also helped set up Anushilan Samiti that supported revolutionary violence as a means for ending British rule in India and inculcated nationalist spirit among youth through weekly classes and interactions. He had no faith in mild protests in the form of non-cooperation, and on that one issue, he differed with Mahatma Gandhi.
In 1920, Pal was among the senior leaders who opposed Gandhi's resolution on non-cooperation over the fact that it didn't address self-government.
Bipin Chandra Pal made his efforts to remove social and economic ills. He opposed the caste system and advocated widow remarriage. After his first wife died, he married a widow and joined the Brahmo Samaj. Bipin Chandra Pal was a multifaceted personality that included being a leader, teacher, journalist, orator and writer. All India Radio salutes the nationalistic spirit of the great freedom fighter. Today we also remember freedom fighter and educationist Ashwini Kumar Datta, who left us on 7th November 1923. The partition of Bengal drew Datta to the Swadeshi movement, and he founded the Swadesh Bandhab Samiti to promote indigenous products and boycott foreign goods.
Today we are also remembering Sir C.V. Raman on his birth anniversary, a physicist known for his work in the field of light scattering. Well, using a spectrograph that he developed, he and his student K.S. Krishnan discovered that when light traverses a transparent material, the deflected light changes its wavelength. This phenomenon, hitherto known unknown type of scattering of light, which they called modified scattering, was subsequently termed the Raman effect or Raman scattering. In 1930, Raman received the Nobel Prize in Physics for the discovery and was the first Asian and non-white person to receive a Nobel Prize in Physics.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी को, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस महान स्वर साधक थे जिन्होंने रागों, भक्ति संगीत और नाट्य संगीत को नई ऊंचाइयां दी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनकी गायकी में आगरा और जयपुर घराने की गंभीरता के साथ ही गोवा की मधुर लोक परंपरा का रंग भी झलकता था। वो रागों में गहराई, शब्दों में भाव और सुरों में पवित्रता, तीनों का अद्भुत मेल दिखाते थे।
And Karishma, we all know that yesterday there was a sad news, especially in the film industry, because Sulakshana Pandit, she bid adieu to this physical world. And known for her acting prowess, and of course she was, few actresses have been singers also, so Sulakshana Pandit was one of those actresses jo apne gaane bhi khud gaati thi, not all but most of them, and she worked predominantly in Hindi cinema during the 70s and 80s, and she belonged to the Mewati gharana. She was also her career spanned across the 70s and 80s, and as a leading lady, she worked with most of the top actors of the 70s like Jitendra, Sanjeev Kumar, Rajesh Khanna, Vinod Khanna, Shashi Kapoor, and many others. Let's listen to this song that is filmed on her and also sung by her. And today is the birthday of the very, very, very fiery and feisty Usha Uthup. And unke baare mein zyada baat na karein. Happy birthday, Usha. Here's a tribute to you. And on that note, let's end today's Parikrama. Stay tuned to Akashvani. Namaskar. Namaskar.